वाल्मीकि की रामायण प्रारंभ होती है। पहला श्लोक छोड़ दीजिए, दूसरे श्लोक से वहां पर वाल्मीकि का प्रश्न देवर्षि नारद से, तीन श्लोकों में प्रश्न है, कौन मस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यमान दृढ़व्रतः, कि ऐसा कौन व्यक्ति है आज इस युग में, बताइए तो सही, कि जो सबसे अधिक धार्मिक, जो सबसे अधिक गुणवान, जो सबसे अधिक शक्तिमान और जिसके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा है और जो दूसरों के प्रति कृतज्ञ है, और उसी प्रकार चारित्रेण च को युक्ता, चरित्र से कौन युक्त है, सर्वभूतेषु को हितः, सब भूतों का कल्याण करने वाले ऐसे कौन व्यक्ति हैं, विद्वान कह, कौन सबसे विद्वान है, कह समर्थश्च, सबसे बड़ा समर्थ व्यक्ति कौन है, कश्चैक प्रिय दर्शनः, और कौन ऐसे हैं जो रूप में सबको बाजी मार करके ले जाते हैं, आत्ममान को, कौन आत्ममान है, कौन अपने आत्मस्वरूप में स्थित है, जिन्होंने अपने आप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जितक क्रोध हो, ऐसे कौन है जिन्होंने अपने क्रोध पर विजय पा ली हो, द्वितीमान कौन, सूर्य कहा, ऐसे द्वितीमान कौन है, प्रकाशमान कौन है, जिनकी आभा से ऐसा लगता है कि सब कुछ मानो फीके हो गए हैं, ऐसे आभामान कौन है, को अनसूय कहा, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखते, विद्वेष का भाव नहीं रखते, ऐसे कौन है, और कस्य विभ्यति देशश्च, ऐसे कौन है कि जिससे दूसरे लोग डरते हों, ऐसे समर्थ कौन है, ये प्रश्न। और हम पढ़ते हैं इन प्रश्नों के उत्तर में देवर्षि नारद ने श्री राम का चरित्र वाल्मीकि के समक्ष रखा, और वाल्मीकि ने श्री राम के संबंध में देवर्षि नारद से ज्ञान प्राप्त किया और रामायण की रचना की। यह परंपरा है कि रामायण की रचना इस प्रकार से। अब महर्षि वाल्मीकि और भगवान श्री राम समकालीन है, परंतु वाल्मीकि श्री राम से अपरिचित है, एक ही काल में होते हुए एक दूसरे से, मानो वाल्मीकि श्री राम को नहीं जानते हैं, वाल्मीकि को श्री राम का परिचय मिलता है एक माध्यम से, देवर्षि नारद के माध्यम से। अब इनको माध्यम कहां मिला, श्री राम को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे जाना, उन्होंने कैसे रामकथा की रचना की, किसी ने पूछा। अच्छा तुलसी जी, देखिए वाल्मीकि को तो देवर्षि नारद ने बताया, अच्छा आपको किसने बताया, आपने यह जस्तो लिखा, उन्होंने, आप जानते हैं ना गीतावली में बधैया के गीत लिखे हैं। अब बधैया के गीत ऐसे हैं, बधैया के गीत कहते हैं मांगलिक गीत, जैसे लड़के के जन्म के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं बधैया के गीत हैं, तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में यह सब बहुत अधिक प्रचलित है, बच्चे का जन्म हुआ ये मांगलिक बधैया के गीत गाए जाते हैं। तब अब कहा, उस प्रश्नकर्ता ने पूछा, उस जिज्ञासु ने या संशयालु ने पूछा, अच्छा गोस्वामी जी आपको श्री राम का परिचय कैसे मिला, बढ़िया बात पूछते हो, परिचय कैसे मिला क्या मतलब, नहीं मेरा पूछने का मतलब यह है गोस्वामी जी कि आपने गीतावली में कुछ बधैया के गीत लिखे हैं, हाँ लिखे तो हैं, तो आप तो ऐसा उसमें लिखते हैं कि मानो श्री राम के जन्म के समय ये गीत गाए गए थे, तो उसने कहा हाँ गाए गए थे इसीलिए तो लिखा है। अच्छा आपको कैसे मालूम, मैंने तो बहुत सी रामायणें पढ़ी हैं, मैंने अध्यात्म रामायण पढ़ी, वाल्मीकि रामायण पढ़ी, लोमश रामायण पढ़ी, भुशुंडी रामायण पढ़ी, परंतु कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि श्री राम के जन्म के समय ये बधैया के गीत गाए गए थे, और आप कैसे कहते हैं कि ये गीत गाए गए थे, आपको कैसे मालूम। तुलसी कहते हैं नहीं मालूम, तुलसीदास, तुलसीदास प्रभु सोहिलो गावत उमगी उमगी अनुराग रे, वे तो सोहलो गा रहे थे, गाने वालों के साथ तुलसीदास भी मिलकर के गा रहे थे, ये बधैया गा रहे थे, चारु चरित रघुवंश तिलक के गावत, जहां पर कहते हैं कि तह तुलसी मिली गाई हो, कि तुलसी भी वहां मिलकर के गायन कर रहे थे, कर रहा था, तो इसका जब इस प्रकार से वे उत्तर देते हैं वह तो संशयालु चकित हो जाता है, कहता है तुलसी जी आपका दिमाग ठीक है, तो आप तो अभी और श्री राम मालूम नहीं कितने हजार साल पहले, और आप कहते हैं कि उनके जन्म के समय बधैया गाने वालों के साथ आप भी मिलकर के गा रहे, तब होगा जब हम ऐसा मान करके पढ़ें कि मैं भी उन पात्रों में से एक हूं, बहुत से तो पात्र हैं रामचरितमानस में, और मैं ऐसा मान करके पढ़ूं कि मैं भी एक पात्र हूं, तब तो जीवन में लाभ मिलेगा, ऐसा लगेगा कि मैं हरदम प्रभु के साथ बना हुआ हूं, जैसे मैं कहा करता हूं जो श्री राम कृष्ण को इष्ट मान करके चलते हैं, अब
उनका वह वचनामृत हम पढ़ रहे हैं। अब वचनामृत हमने पढ़ा कि श्री राम कृष्ण बैठे हुए हैं अपने कमरे में, छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं, भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। यदि मैं इसे इतिहास का मानता हूं तो वह 100 वर्ष पहले की बात हो गई, पर भाव की दृष्टि से यदि मैं देखूं, जैसे मैं दक्षिणेश्वर चला गया, वहां पर मैंने देखा श्री राम कृष्ण देव का कमरा, देखा उनके दो तखत, देखे बड़ा तखत, देखा छोटा तखत, देखा। और जिस समय मैं पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं भी कमरों में भक्तों के साथ बैठा हूं। श्री राम कृष्ण छोटे तखत पर बैठे हैं, साहस्य वदन, एक ने प्रश्न पूछा, श्री राम कृष्ण उत्तर दे रहे हैं और मैं भी कोने में बैठा हुआ उस उत्तर को सुन रहा हूं। वहां नरेंद्र हैं जो बाद में विवेकानंद बने, वहां राखाल हैं जो बाद में ब्रह्मानंद बने। यदि मैं यह इस प्रकार का भाव नेत्र ले आता हूं तब तो सार्थकता है। तो रामचरित मानस की भी सार्थकता किसमें, तुलसी यह दिखा देते हैं कि जब सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो, जब भगवान की लीलाओं में मैं भी एक अभिन्न अंग हूं, इस प्रकार का बोध हो, तब तो उससे लाभ मिलेगा। यह मानो दृष्टिकोण। इसीलिए तो जिस समय संशयालु ने कहा कि तुलसी जी आप तो बहुत हांकते हैं, आप तो ऐसा लिखते हैं कि जैसे मानो आप भी वहां पर उपस्थित हो, आप लिखते हैं कि वहां पर खेल खेला गया। तुलसी कहते हैं हां सच बात है, खेल खेला गया, सरयू के तीर पर खेल खेला गया। तो आप लिख रहे हैं जैसे आप भी एक खिलाड़ी थे। हां था ना भाई, मैं था, कह रहा हूं कितनी बार कि मैं भी खिलाड़ी था। अच्छा आप खिलाड़ी थे तो खेल के लिए दो दल बनते हैं। हां हां दो दल बने। अच्छा एक दल के नेता कौन, भगवान श्री राम। दूसरे दल के नेता कौन, भैया भरत। आप किस दल में खेले, कहा कि भैया भरत के दल में। अच्छा आप भैया भरत के दल में खेले, क्यों, भैया भरत आपको श्री राम से ज्यादा प्यारे हैं। कहा भाई देखो तुम बात तो समझते नहीं, पूछते तो बहुत हो। मैंने अपने मन से कहा देख रे तुलसी, यदि तू प्रभु की तरफ से खेलेगा तब तो तुझे उनके श्रीमुख के दर्शन नहीं होंगे, उनकी पीठ ही दिखेगी, इसलिए तू विरोध पक्ष चुन ले तुलसी और विरोधी बनकर के खेल, ताकि सामने प्रभु का विग्रह बना रहे, उनके श्रीमुख के दर्शन तुझे होते रहे। बस इसीलिए मैंने विरोध पक्ष चुना। वाह वाह तुलसी जी। और फिर आप तो ऐसा लिखते हैं कि भैया भैया भरत का दल जीत गया। हाँ हाँ लिखता हूं सही है, तो भरत का दल जीत गया और श्री राम को खुशी भी। कहा हाँ भाई बहुत खुशी भी। और आपने लिखा कि उन्होंने अपना कोषागार खुलवा दिया और जिसने जो चाहा उसने वही पाया, आप ऐसा लिखते हैं। सच लिखता हूं। अच्छा आप भी जब खिलाड़ी थे तो आपने भी कुछ मांगा होगा, फिर आपको भी कुछ मिला होगा। तुलसी ने कहा हाँ मैंने भी मांगा, मुझे भी मिला। क्या मांगा, तुलसीदास तहां भक्ति दान बर मांग लियो। तुलसी ने भक्ति का वरदान मांग लिया और प्रभु ने कृपा करके तुलसी को भक्ति का वरदान दिया। यह तुलसी की दृष्टि है, सार्थकता, मानो वे बने हुए हैं। इसीलिए जब किसी ने कहा तुलसी जी अब मुझे मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया, अब मुझे मालूम पड़ गया कि चित्रकूट आपको पसंद क्यों है, क्यों, क्या मालूम पड़ा, वहां पर श्री राम निवास करते थे ना। तुलसी ने कहा यह थे की क्या बात करते हो, यह थे था लगाया। चित्रकूट महाबसत प्रभु नित्य लखन समेत, अरे वे तो नित्य वहां निवास करते हैं, यह थे की क्या बात करते हो। यह तुलसी का दृष्टिकोण है। इसे हमने कहा कि अब दृष्टि है, जिस दृष्टि से वे प्रभु को हमारे समक्ष रखते हैं। अब यह जब सारी चर्चा हुई, प्रभु के संबंध में इतनी सब बातचीत की, तो एक ने कहा कि अच्छा तुलसी जी मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपने श्री राम को प्रभु बना दिया, ब्रह्म बना दिया, और इसलिए क्या आपने उन्हें हमसे दूर नहीं कर दिया। करे कहा नहीं, मैं तो तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैंने तो तुम्हारे करीब ला दिया है, ईश्वर बना करके श्री राम को तुम्हारे बिल्कुल समीप ला दिया है। और सचमुच ईश्वर बना करके वे समीप ला देते हैं। एक प्रसंग उपस्थित करते हैं तुलसी, जिस समय प्रभु लौटते हैं पुष्पक विमान में आए, जब देखते हैं प्रभु ऊपर से लक्ष लक्ष लोग अगवानी करने के लिए अयोध्या के उस विराट मैदान में खड़े हैं, और जिस समय प्रभु नीचे उतरते हैं, अब क्या करें, कैसे मिला जाए। अब प्रत्येक व्यक्ति से अगर मिलते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से मिलने में 15 सेकंड भी खर्च होता है, इतने व्यक्तियों से क्या मिल सकते हैं। तुलसी कहते हैं देखो इतिहास के राम तो इनसे नहीं मिल सकते, सब व्यक्तियों से नहीं मिल सकते, भाव के यदि राम हो तो सब व्यक्तियों से मिल सकते हैं, सबकी कामना की पूर्ति कर दे सकते हैं। और इसीलिए वे क्या लिखते हैं, प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक की कृपालु खरारी। क्या कौतुक किया, अमित रूप प्रकटे तहि काला जथा जोग मिल सबहि कृपाला छन महि सबहि मिले भगवाना उमा मरम यह काहुन जाना।
कहते हैं कि देखो प्रभु ने अमित रूपों में अपने को प्रकट कर लिया और कहते हैं कि सबसे प्रभु मिलते हैं और किस प्रकार मिलते हैं,
जे जही भाय रहा अभिलाषी तही तही कह तस तस रुख राखी।
कि प्रभु तो ऐसे हैं जो प्रत्येक की कामना की पूर्ति करते हैं, जो व्यक्ति जिस प्रकार का भाव पोषित करके बैठा हुआ था कि प्रभु जिस समय अयोध्या लौटेंगे उस समय मैं उनसे इस प्रकार से मिलूंगा, तो प्रभु उन सबसे उसी प्रकार मिलते हैं और एक ही काल में अपने अनंत रूप बना करके सबसे भेंट लेते हैं, जो जिस प्रकार की इच्छा रखता था उस इच्छा की पूर्ति करते हुए। अब तुलसी कहते हैं कि देखो कि अब कितने लोगों ने श्री राम को देखा, अब इतिहास के राम तो इतने रूप नहीं बना सकते, भाव के राम कैसे हैं। कहते हैं भाव के राम, अच्छा मान लो तुलसी का मंतव्य यह है कि हमने किसी वयोवृद्ध सज्जन से पूछा होता जो भगवान श्री राम की अगवानी में वहां पर गए थे, कहा कि महाराज हमने सुना कि जब प्रभु लौटे अयोध्या लौटे लंका से तो आप गए थे अगवानी करने के लिए। कहा हां गया था। अच्छा यह बताइए कि जिस समय श्री राम उतरे तो सबसे पहला कार्य उन्होंने क्या किया। उस वृद्ध ने अपने नेत्रों में आंसू भर करके कहा होता, क्या बताएं वे कितना आदर देते हैं, कितनी सज्जनता है उनमें। जिस समय श्री राम उतरे क्या कहूं, वहां पर तो माताएं भी विद्यमान थी, वहां पर गुरु वशिष्ठ भी थे, अन्य गुरुजन भी थे, पर जो ही श्री राम उतरे उनके नेत्र मेरे नेत्रों से मिले और वे तुरंत लपक करके मेरी तरफ चले आए, चरणों में झुक करके प्रणाम करने लगे कि मैंने उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया, हृदय से लगा लिया। अब वृद्ध ने एक प्रकार से उसका वर्णन किया। यदि हमने किसी सखा से पूछा होता कि आप तो श्री राम के सखा हैं, जब प्रभु लौटे अयोध्या तब तो आप भी थे अगवानी के लिए। हां था। तो सबसे पहला कार्य प्रभु ने क्या किया, क्या बताएं भाई, प्रभु बड़े ही सखा वत्सल हैं, वहां तो लक्ष लक्ष लोग थे, अब मैं तो एक साधारण सा, पर प्रभु जो ही उतरे अचानक उनकी नजर मेरी तरफ गई और वे लपक करके मेरी तरफ आए और मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं तो गदगद हो गया, मानो धन्य हो गया। यह एक दूसरी कथा बन गई। अब यदि हमने किसी छोटे से पूछा होता जो उम्र में छोटा, क्यों भैया तुम भी तो गए थे ऐसा सुना, हाँ गया था, तो बताओ तो भला प्रभु ने उतर करके सबसे पहला कार्य क्या किया। अरे क्या बताऊं आपको, प्रभु कितने भक्त वत्सल हैं, वे जब उतरे वहां तो मानो समुद्र था, अपार भीड़ थी, मैं तो एक कोने में दुबका था और पैर उठा उठा करके उन्हें देख रहा था, प्रभु जो ही उतरे अचानक उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और मेरा नाम लेते हुए सीधे मेरी ओर लपक करके आए, माताओं को नहीं देखा, गुरु को नहीं देखा और पूजनीय जनों को नहीं देखा, वे तो लपक करके आए, उनके चरणों में मैं गिरने वाला था, उन्होंने अपनी बाहों में थाम करके हृदय से लगा लिया। अब ये कितनी रामायणें बन गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाव की दृष्टि से प्रभु भिन्न भिन्न प्रकार की लीला कर सकते हैं, इतिहास का पुरुष नहीं कर सकता, भाव का पुरुष कर सकता है। तो जब कैसा कहा गोस्वामी जी ने कि देखो कितने लोग हैं, कितने प्रकार से उसका अनुभव करते हैं, भाव नेत्रों से अनुभव करके धन्यता का अनुभव करते हैं। कहा कि अच्छा तुलसी जी, तो फिर यह तो बड़ी विचित्र बात है, फिर आप कहते हैं कि ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ। अरे इसका मतलब यही हुआ कि मैं कहना यह चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से ही प्रभु को देखना चाहता है, मेरा तात्पर्य यही है। तुलसी ने कहा कि जैसे एक परिवार है उसमें 10 सदस्य हैं और 10 सदस्यों के इष्ट देवता भगवान श्री राम हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति जब श्री राम का चिंतन करेगा तो अपने अलग ढंग से करेगा, प्रत्येक व्यक्ति का राम दूसरे व्यक्ति के राम से निश्चित ही भिन्न होगा। यह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और यह जीवन का सत्य है कि मैं जिस प्रकार श्री राम का चिंतन अपने हृदय में करता हूं मेरा भाई वैसा नहीं करेगा, वह भी भले ही इष्ट के रूप में श्री राम का चिंतन करता है पर वह भिन्न रूप से करेगा, मेरी माता जब अपने इष्ट श्री राम का चिंतन करेगी तो वह भिन्न रूप से करेगी। मानो यह भाव की दृष्टि में यह विशेषता कि मैं जैसा चाहूं वैसा श्री राम का चिंतन कर सकता हूं, यही अद्भुत बात है जो गोस्वामी जी हमारे समक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा, इस पर उस संशयालु ने पूछा,
तुलसी जी से, तुलसी जी आप जो बात कहते हैं ना वह मेरी कुछ समझ में तो आती नहीं बात। तो कैसे आएगी भैया, अब तुम तो विचार को लेकर के, तर्क को लेकर के, बुद्धि को लेकर के तुम चल रहे हो, और इसलिए कैसे आएगी। नहीं तुलसी जी, बात यह है कि जैसे देखिए, अब मैंने दो रामायणें पढ़ी, एक अध्यात्म रामायण पढ़ी, आपकी रामायण पढ़ी। अब अध्यात्म रामायण में एक घटना भिन्न प्रकार से वर्णित है और आपकी रामायण में वही घटना भिन्न प्रकार से वर्णित है। तुलसी ने कहा कि कौन सी घटना के बारे में कहते हो, क्यों? वह जो केवट प्रसंग है, देखिए। उसने कहा अध्यात्म रामायण जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि श्री राम की भेंट केवट से होती है, कब? जिस समय श्री राम धनुष यज्ञ के लिए जा रहे हैं जनकपुरी, तब भेंट होती है। आप अपनी राम कथा में लिखते हैं कि जब श्री राम वनवास के लिए जा रहे हैं तब भेंट केवट से होती है। अब यह जो बात है तो अब कैसे करें, तो इसमें क्या समस्या तुम्हारी हो गई? गोस्वामी जी कहते हैं क्या समस्या होगी, अरे उल्टी बातें लिखते हैं आप। अध्यात्म रामायण में जो बात लिखी उससे बिल्कुल उल्टी बात आप लिखते हैं, तो किसको सत्य माने? एक को सत्य मानते हैं, देखिए यदि अध्यात्म रामायण की बात सत्य माने तो देश और काल का कितना अंतर हो जाता है, कि जैसे श्री राम जनकपुरी की ओर जा रहे हैं तब यदि केवट से भेंट हुई हो तब तो वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि विवाह के 12 वर्ष बाद वे वनवास गए तो ऐसा कहेंगे कि 12 वर्ष पहले वे मिले। आपकी बात को सत्य माने तो केवट से भेंट श्री राम की तब होती जब वे दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, और 12 वर्ष की बात की घटना होती है तब किस रामायण पर विश्वास करें। तुलसी ने कहा कि दोनों पर अगर विश्वास कर लो तो क्या हानि है, दोनों पर ही कर लो, ऐसे दोनों पर कर लें तो क्या हर्ज है। तुलसी ने कहा कि यदि तुम अपनी दृष्टि से, जैसा हम पूर्व में कह चुके हैं, यह मान करके चले भाव की दृष्टि से कि प्रभु मेरे घर के सामने से होकर के गए हैं, दंडकारण्य गए हैं, तो वह भी सत्य है। कहा तुलसी जी यह कितनी रामायण आप बना रहे हैं, ये तो बहुत सी रामायण हो गई। कहा रामायण बहुत सी है, इसीलिए तो मैं कहता हूं सभी सत्य है, ये जितने भी ये तथ्य हैं, प्रसंग हैं, ये सब भाव की दृष्टि से सभी सत्य हैं। कितनी रामायण है? कह दिया रामायण शतकोटि। कहा कि 100 करोड़ रामायण है। फिर अचानक गोस्वामी जी को याद हुआ या कि मैंने 100 कोटि रामायण की बात तो कह दी, पर मनुष्यों की संख्या तो 100 कोटि से अधिक हो सकती है, तो ये जो मनुष्यों की संख्या 100 कोटि से अधिक है, तब ये जो रामायण तो 100 कोटि से अधिक हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग रामायण, प्रत्येक व्यक्ति के राम भिन्न, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की जो रामायण होगी भिन्न, इसलिए तो वह 100 कोटि से अधिक हो। तुरंत उन्होंने जोड़ा रामायण शतकोटि अपारा, और इसीलिए वे कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, राम चंद्र के चरित सुहाए, कलप को तिलक जाहिन गाए, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध मनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहिन मुनि आचरज सयाने, राम कथा के मिट जग नाही, अस प्रतीति तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा, कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भिन्न भिन्न प्रकार से कि प्रभु वही प्रभु, भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न प्रकार की कथा है। अरे रामायण की कोई इति है? राम कथा की इति है? अरे प्रभु कितने रूपों में लीला करते हैं, अवतरित होते हैं? यह गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि प्रभु आते हैं, आते हैं कैसे आते हैं, वे कहते इसी के लिए आते हैं। प्रभु आते हैं, उतरते हैं, हम पर कल्याण करने के लिए उतरते हैं, और इसलिए तुलसी का जो सिद्धांत है श्री राम के संबंध में वह अवतरण का सिद्धांत है। यहां पर यदि हम वाल्मीकि की राम कथा को पढ़ें तो प्रभु का अवतरण उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता जितना तुलसी की राम कथा में उनका अवतरण दिखाई देता है। साक्षात वही ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा भक्तों पर कृपा करने के लिए नीचे अवतरित होता है, यह गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार कहते अघाते नहीं। अरे तभी तो कहते हैं ना कितनी अच्छी हो, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही चारु चरित नाना विधि करही, राम कथा कह जगमिति जग नाही अस प्रतीति तिन्हके मन माही, नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा, कल्प भेद हरि चरित सुहाये भांति अनेक मुनीसन गाये,
कहते तुम भी एक गालो, तुम भी एक राम कथा बना लो और भाव नेत्रों से प्रभु को देखो, तुम्हारे हृदय में प्रभु का अवतरण होगा। अवतार वो उतारते हैं, अवतरण नीचे उतरना, एक संस्कृत में शब्द है अवतरणिका, क्या मतलब है सीढ़ी, अवतरणिका का तात्पर्य कि सीढ़ी। और अवतरणिका का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जैसे हमें ऊपर जाना है तो हम अवतरणिका लगा देते हैं, सीढ़ी लगा देते हैं और सीढ़ी के सहारे हम नीचे से ऊपर जाते हैं। साधकों ने कहा कि प्रभु हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, कैसे आए, कह दिया प्रभु ने कि देखो कितने सब शास्त्रों ने उपाय कहे हैं, यह साधना की सीढ़ी लगी है, इस पर चढ़ो और आ जाओ। तुलसी ने भी पुकारा, तुलसी ने कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो मेरी बात अवश्य सुनेंगे, मैं जोर से ही कहता हूं, वैसे तो मन में विचार का स्पंदन उठा तो भी आपने सुन लिया, पर मैं जोर से कहता हूं ताकि मेरे ये आसपास खड़े हुए लोग भी सुन सकें, तो प्रभु आप मेरी बात सुन रहे हैं, उत्तर दीजिए। कोई उत्तर नहीं आता, जोरों से चीख करके तुलसी बोले कि प्रभु क्या आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, यदि आप अंतर्यामी हैं, अगर जग की बात जानने वाले हैं और सचमुच यदि शास्त्रों की ये सारी बातें सत्य हैं तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रभु को कहना ही पड़ा कि हां तुलसी कहो मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। अंदर से मानो अपने उस मनोयंत्र से तुलसी ने यह सारी बातें सुनी, धन्य हो गए। उन्होंने कहा अच्छा प्रभु आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। कहा पूछो, हम आपके पास आना चाहते हैं प्रभु, ये जो हम कोटि कोटि लोग यहां पर संसार में खड़े हैं, पृथ्वी में खड़े हैं, हम आपके पास पहुंचना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि देखो वह तो सीढ़ी लगा करके रखी है ना, संतों और मुनियों ने साधना की सीढ़ी लगा दी है और चढ़ो और आ जाओ। तुलसी ने कहा प्रभु यह जो सीढ़ी है और सीढ़ी के सहारे चढ़ने के लिए कहा गया है, तो संतों ने कहा कि यह साधना की सीढ़ी है, इस पर चढ़ो धीरे धीरे और धीरे धीरे चढ़ करके नाम और रूप के परे चले जाओ और तब आपको हम प्राप्त होंगे। पर महाराज यह तो बड़ा विकट पथ है, अब देखिए तो सही हम हैं कितने कोटि कोटि लोग और आपके पास जाना चाहते हैं, आप कहते हैं यह साधना की सीढ़ी दिखाते हैं, इस पर चढ़ करके हम भला कैसे आएंगे। प्रभु ने कहा तो मैं क्या करूं, तुलसी ने कहा कि अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप तो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, आपने इस विश्व की रचना की है और जब विश्व को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका रचयिता महान गणितज्ञ होना चाहिए, तो प्रभु आप तो महान गणितज्ञ हैं, अब मैं एक छोटा सा प्रश्न गणित के संबंध में आपसे करता हूं। क्या करो, तुलसी ने कहा अच्छा यह बता दीजिए कि ठीक है आपने कहा कि साधना की सीढ़ी के सहारे चढ़ करके आप तक पहुंच जाएं, तो बस मेरा छोटा सा प्रश्न यह है कि ये जो हम लोग इतने संसार में खड़े हैं आपके पास आना चाहते हैं तो सीढ़ी से चढ़ करके आपके पास आने में कितना समय लगेगा। प्रभु चुप हो गए, बहुत मुश्किल में पड़ गए, कह दें कि 100,000 साल में पहुंचोगे तो उन्होंने कमिट कर लिया, माने वे ऐसे मंत्री तो नहीं है कि वायदा करके मुकर जाएं कि मुख से कोई बात निकली और वे उसका मालन न करें। प्रभु मन ही मन में सोचते हैं क्या करें, अभी इसका उत्तर कैसे दे, यदि कहते हैं ठीक है इतने वर्ष में पहुंच जाओगे तो तुलसी ने बाजी मार दी, सबके लिए उन्होंने मुक्ति का रास्ता प्रशस्त कर दिया, तब प्रभु अब क्या कहें, कोई उत्तर नहीं दे पाते। तुलसी ने कहा प्रभु आप निरुत्तर कैसे हो गए,
बोलिए, यह तो बहुत छोटा सा प्रश्न है कि हम सब आपसे मिलना चाहते हैं और आप हमें सीढ़ी दिखाते हैं, इस सीढ़ी से चढ़ करके हम आपके पास कब तक पहुंच सकेंगे बताइए आप। प्रभु को कहना ही पड़ता है, तुलसी तुम्हारा प्रश्न विकट है, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। तो तुलसी ने कहा, प्रभु यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो मेरे पास एक इस प्रश्न का उत्तर है, और उस प्रश्न के उत्तर में मैं यह बता दूंगा कि आप कितनी देर में हम सब लोगों से मिल ले सकते हैं, हम सब आपके दर्शन कर ले सकते हैं, आपसे हम मिल ले सकते हैं, आप हमें प्राप्त हो जा सकते हैं, इसका उत्तर मेरे पास है। ठीक है तुलसी, बताओ तुम्हारे पास उत्तर है तो। तुलसी ने कहा, प्रभु मैं जब उत्तर बताऊंगा और अगर वह उत्तर आपको पट जाएगा तो उस उत्तर के अनुसार आपको करना पड़ेगा, यह वचन दीजिए तब मैं उत्तर बताऊंगा। प्रभु सोचते रहे कि आखिर यह क्या उत्तर देगा, प्रभु को लगा कि क्या उत्तर देगा, अंत में उन्होंने कह दिया, हां तुलसी ठीक है, यदि तुम्हारा उत्तर मुझे पट गया तो मैं तुम्हारे उत्तर के अनुसार करूंगा। तो तुलसी ने कहा कि प्रभु जब हम लोग कहीं पर सीढ़ी लगाते हैं तो ठीक है नीचे का व्यक्ति उस सीढ़ी के सहारे ऊपर जाएगा, इसके लिए सीढ़ी लगी रहती है, पर अगर कोई व्यक्ति ऊपर में हो तो वह उस सीढ़ी के सहारे नीचे भी तो उतर सकता है, आप अकेले हैं ऊपर और हम सब हैं नीचे, आप यही क्यों नहीं करते कि उस सीढ़ी के सहारे नीचे उतर आए जिससे एक साथ हम सभी आपसे मिल लें, आपके दर्शन कर लें। बात तो पटी, प्रभु को पटी ही गई, और यह बात तो ऐसी थी वे ना ही कर नहीं सके, इसलिए अवतरण होता है, वे उतरते हैं, भक्त उन्हें उतारता है, कहता है तुम उतरो, जैसे हमारी साधना है कि सीढ़ी के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ें, उसी प्रकार प्रभु की साधना है कि वे सीढ़ी के सहारे नीचे उतरें, या नीचे उतरना उनकी साधना है। प्रभु तपस्या करते हैं, सतपो अतप्यतो, हम पढ़ते हैं वे तपस्या करते हैं, प्रभु जो रूप धारण करते हैं लीला करते हैं यह प्रभु की तपस्या है, वे सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और तुलसी उन्हें ला देते हैं, नीचे ला करके अवस्थित करते हैं, यह तुलसी की कृति कि अवतार का तत्व वे अवतरित करा ही देते हैं। और अंत में कहें कि तुलसी जैसे मानते हैं इस राम कथा को, क्या मानते हैं राम कथा की उपमा वे करते हैं मंदाकिनी से, वे करते हैं गंगा से, और यह जो वाल्मीकि की राम कथा है, वाल्मीकि की राम कथा, यह भी बड़ा विलक्षण संकेत दिया गया है, यह सब बातें आदरणीय पंडित जी महाराज ने कई स्थानों पर कही हैं, यहां सुना है वहां सुना है, यह सब बातों का परिवेशन आपके समक्ष कर दिया जा रहा है, आपको याद हो आपको न याद हो, यहां जो बातें न कही हो, परंतु जो बातें अत्यंत मानो रोचक हैं, माने अत्यंत रस वर्धक हैं, रसपूर्ण हैं, बार बार चिंतन करने से उनका रस हमारे जीवन में उतरता है, तो आप तो सुनते ही रहे हैं। तो वे कहते हैं यहां पर तुलसी अपनी राम कथा की तुलना वे करते हैं मंदाकिनी से, गंगा से, और यह जो वाल्मीकि की राम कथा है वह क्या है, वह तो रामायण है, राम का अयन, अयन का एक तात्पर्य घर भी होता है, घर, राम का घर, राम का मंदिर, तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण मानो राम का मंदिर, और तुलसी के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस वह तो जैसे हमने कहा कि वह गंगा है। वे तो कहते हैं पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, बस सब लोगों को पावन करने वाली गंगा है यह राम कथा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिंह रघुवीर बिहारु। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिंह रघुवीर बिहारो। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा गंगा है। अब यह गंगा